अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे भाई। शैतान ना हर एक के साथ लगा हुआ, इसीलिए अल्लाह ताला ने फौरन उसके बाद, आप देखें सूरह हामिम सजदा में भी यही बात है और यहाँ पे भी फौरन शैतान की बात की है अल्लाह ताला ने, क्योंकि ये शैतान आने नहीं देगा आपको इस तरफ, इसके लिए आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वहां पे भी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया उसी इस बात के बाद ही आयत नंबर 36 में, कि अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो क्या करो, फस्ताइज बिल्लाह, अल्लाह से पनाह मांग लो, अल्लाह ताला की पनाह में आ जाओ, यकीनन वो बड़ा सुनने वाला जानने वाला है। तो यहाँ पे भी क्या फरमाया, वक़ुर रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहती हूँ, अल्लाह मुझे अपनी आगोश में ले ले, अपनी पनाह में ले ले। किससे? शैतान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसके वसवसे हैं, इसकी उकसाहटें हैं भाई, वो उकसाता रहता है इंसान, बैठता है, नहीं तुमने क्यों नहीं उसको जवाब दिया, तुम क्यों ऐसे बैठी हुई हो, अब तुम्हें पता है वो और ज्यादा देखना कितनी चौड़ हो जाएगी, वो तो तुम्हें कैसे देखना, फिर अगली दफा तो उससे भी ज्यादा करेगी, वो समझेगी तुम बुजदिल हो, वो समझेगी तुम्हें बात ही नहीं करनी आती। तो ये चीजें वो डालता रहेगा, और हमेशा याद रखें कि ऐसा जब भी होता है ना, उकसाहटें आती रहती हैं आती रहती हैं, फिर क्या होता है आप किसी से बात करते हैं, वो फिर शैतान उसके भी पास जाके उसके भी दिल में बात डालता है, वो भी आपको ये कहती है, हाँ वाकई तुम्हें, तुम कितनी पागल हो, तुमने ये क्यों नहीं कहा उसको, तुमने ये क्यों नहीं जवाब दिया, तुम्हें तो ऐसे करना चाहिए था। अब शैतान उसके थ्रू आया, और देखिए कभी आपके दिल में डालेगा, कभी आपके जिसके साथ आप बात करेंगे उसके दिल में डालेगा। तो ऐ अल्लाह शैतान के वसवसों से हमें बचा ले। अब शैतान ऐसा है कि उसको आप देख नहीं सकते, ये आपका वो दुश्मन है जो नजर नहीं आता, वो इंसान के अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है ना, इस तरह इंसान के अंदर दौड़ता है, और इंसान को शर की तरफ लेकर जाता है। और देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिन अश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़खिही व नफ़्सी, ये फरमाया आपने, ये दुआ पढ़ा करते थे कि मैं पनाह मांगता हूँ शैतान से कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह समीउल अलीम की शैतान के किससे, हमज़ से, हमज़ा, हमज़ा क्या, सॉरी हमज़ा नहीं, हमज़ा, हमज़ा क्या है, उसका वसवसा, और नफ़खा क्या है, उसके फूंक मारने से, और नफ़सा क्या है, उसके दम करने से मैं अल्लाह की पनाह पकड़ता हूं। और शैतान जो है इंसान के हर काम में, चाहे वो नेकी का काम हो या बदी का काम हो, उसमें उसके साथ शामिल हो जाता है, उसके उसके पास आ जाता है। यानी ये हदीस से हमें पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान तुम्हारे हर काम में हर हाल में तुम्हारे पास आता है, यानी चाहे आप खा पी रहे हो, चाहे मियाँ बीवी का ताल्लुक हो, चाहे इंसान ज़िबा कर रहा हो, चाहे इंसान नमाज पढ़ रहा हो, चाहे इंसान तस्बीह कर रहा हो, चाहे इंसान फारिग बैठा हो, चाहे अकेला हो, चाहे महफिल में हो, चाहे कोई भी काम हो, सारे कामों में शैतान इंसान के साथ शामिल हो जाता है। आप देखें खुशी के मौक़ों पर कितना आ जाता है, गम के मौक़ों पर कितना आ जाता है, कहीं शर हो तो वहाँ पर तो आता ही आता है, खैर के कामों में भी कितना आ जाता है। तो हर काम में आके वसवसे डालता है, वसवसे डालता है। अब जब तक इंसान उसको देख तो रहा नहीं है, जब तक वो अल्लाह ताला की पनाह में नहीं आ जाता ना, अल्लाह की पनाह ऐसे ही है जैसे एक बहुत मजबूत किला हो, समझ ले आप उसके अंदर जाके सेफ हो जाते हैं, उसकी पनाह में आ जाते हैं, शैतान बाहर रह जाता है, ऐसे समझ ले। तो जब तक आप अल्लाह की पनाह नहीं लेंगे ना, उससे बच नहीं सकते। शैतान आपको मुसलसल गुनाह की तरफ को मायल करता रहेगा, छोड़ेगा नहीं जब तक कि आप कर नहीं गुजरेंगे। हमने पहले पढ़ा था ना कि वो दाएं से भी आता है, बाएं से भी आता है, आगे से भी, पीछे से भी, वो उसने खुद कहा है कि मैं आऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको जब तक मैं काम करवा नहीं लूंगा। तो जब गुस्सा आए, जब जिसको भी बहुत गुस्सा आता है, या जिसको भी बहुत वसवसे आते हैं, या जो अगर आपके साथ ऐसी कोई बात हो जाती है, आपके अंदर बार 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 ख्याल आ रहे हैं किसी के खिलाफ, चाहे दीन के खिलाफ आ रहे हैं, चाहे किसी इंसान के खिलाफ आ रहे हैं, तो आप 3 दफ़ा इस दुआ को पढ़ के अपने दिल की तरफ को फूंके, रब्बी आउजु भी का मिन हमजात शयातीन, और पूरे शऊर के साथ पढ़ें। अब ये नहीं कहें कि हम तो पढ़ते रहते हैं, हम तो ये कहते हैं कुछ भी नहीं होता, नहीं, आप पूरे शऊर के साथ पढ़ें और अपने आप को समझे ऐसे कि मैं जो ना जैसे किले में आ गई हूँ। जिनको डिप्रेशन भी होता है ना, ये डिप्रेशन भी शैतान की तरफ से होता है। ये शैतान हर वक्त चाहता है इंसान गमगीन रहे, कभी उसको फ्यूचर के खदशात है कि हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी माजी के दुख उसको बार बार याद दिला दिला कर देखो फलाने वक्त में क्या हुआ था, ये हुआ, ये शैतान के काम है। उस वक्त ये दुआ आप याद कर रहे लें यहाँ से, रब्बी आउज़ बिका मिन हमज़ाति शयातीन व आउज़ बिका रब्बी अन यहदरून, इसको याद कीजिए और इसको पढ़ा करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये तरीका था कि अपने बच्चों में से जो भी बड़े हो जाते यानी जवान हो जाते होशियार हो जाते, उनको ये दुआ सिखाया करते थे, बिस्मिल्लाही आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाती मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व मिन शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शयातीनी व अन यहदरून। और जो छोटे बच्चे होते थे और जो याद नहीं अभी कर सकते थे, उनके गले में इस दुआ को डाल के लिख के लटका देते थे। तो यानी ये दुआ आपको इब्ने कसीर में मिल जाएगी, आप इस दुआ को याद करें और इंशाल्लाह इसको पढ़ा करें, कि हम में से कोई भी महफूज नहीं है शैतान के इन वसवसों से। अच्छा, जो मैंने आपको सॉरी अभी दुआ बताई है, वो उस वक़्त की है जब नींद अगर आपकी खुल जाए और उस वक़्त इंसान एकदम डर जाता है या कुछ है, तो उस वक़्त भी आप ये दुआ पढ़ सकते हैं और सोते वक़्त भी पढ़ सकते हैं, तो अल्लाह ताला महफूज रखेंगे। मगर ये जो मैंने आपको हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की बताई है ना, तो वो फिर ये इस दुआ को ही लिख के तो फिर बच्चों के गले में लटका देते थे या फिर दुआ याद करा देते थे जो बड़े होते थे। तो हम भी अपने बच्चों को याद करवा दें, और छोटे बच्चे हैं तो बेहतर ये है कि हम उनको पढ़वा दें, जो वो पीछे पीछे फॉलो कर सकते हैं उनको, यानी हम आगे आगे पढ़ें उनको पीछे पढ़वा दें ये दुआ हर रात को। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत यानी फ़ायदेमंद रहेगी ये दुआ। जब आप जहानों के बादशाह के जहानों के शहनशाह के पनाह में आ गए, तो पता है और इससे ज़्यादा और सेफ़ जगह कौन सी हो सकती है ना, तो उसकी पनाह ले लिया करें। हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौतु, यहाँ तक कि जब आ जाएगी उनमें से एक को मौत, कौला रब्बिर जाऊनी, तो वो कहेगा या वो कहता है ए मेरे रब मुझे लौटा दे, मुझे वापस भेज दे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जब कोई काफिर उसकी मौत का वक्त आ जाता है, ये मौत का मंजर दिखाया है यहाँ पे, उस वक्त वो फरिश्तों को देख लेता है जो उसकी रूह कब्ज़ करने आए होते हैं, तो तब ये वो बात कहता है जिसके इसी बात का एक और जगह सूरह अनफाल में भी जिक्र है, आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, काश आप उस वक़्त देखते जब फरिश्ते काफिरों की रूह कब्ज़ करते हैं और इनके चेहरों पर और इनके कूलों पर मारते हैं और कहते हैं तुम जलने का अज़ाब चखो। उस वक़्त वो काफिर दिल कहता है अल्लाह ताला से ए मेरे रब अब मुझे वापस भेज दे, एरजाउनी मुझे वापस लौटा दे। अब वो पास खड़े हुए लोगों को तो नहीं पता चल रहा होता, लेकिन वो ये चीख रहा है। इसी तरह मौत के वक्त में, क्योंकि यहाँ पे देखें काफिर का एग्जैक्ट वर्ड नहीं आया, हत्ता इज़ा जा अहदहुम, इसका मतलब क्या, उनमें से किसी एक को, तो किसको आ सकता, और कौन, जो दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की तैयारी नहीं किए रखता, तो वो इंसान जब मौत का वक्त आता है तो फिर फरिश्तों से या अल्लाह ताला से मोहलत मांगता है कि अब मुझे वापस जाने दिया जाए। जो गुनाहों में डूबा रहता है, जो सारी उम्र अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं करता, मुसलमान है चाहे वो, लेकिन अल्लाह के हुक्मों पे नहीं चलता, तो वो ये तमन्ना करेंगे। क्योंकि इसका सबूत हमें सूरह मुनाफिकून से मिलता है, आयत 9:10 में है, ऐ ईमान वालों तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना करते, तो जिसने ऐसा किया वही नुकसान उठाने वाले हैं, और जो कुछ हमने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए, फिर वो ये कहे ऐ मेरे रब तू मुझे थोड़ी देर की मोहलत क्यों नहीं देता कि मैं सदका कर लूँ और नेक लोगों में से हो जाऊँ। इसका मतलब है कि ईमान वालों में भी ऐसे लोग होंगे जो कहते तो हैं हम ईमान वाले हैं, सारी जिंदगी अल्लाह की तरफ नहीं आए, जब उनका मौत का वक्त आया तो अब क्या कह रहे हैं, ऐ हमारे रब हमें वापस लौटा दे, अल्लाह हमें जाने दे वापस, जाने दे, कहाँ जाने दे, इस दुनिया में वापस भेज दे, क्यों जाने दे। लअल्ली अमलु सालिहन, लअल्ली का मतलब एक जगह पे शायद के भी किया गया है और ताके भी किया गया है। शायद, शायद के मतलब क्या, शायद के मैं अमल कर लूँ नेक, कौन से अमल, फी मा तरक्तु, जो मैंने छोड़े हुए थे, जो मैंने नहीं करती थी उस वक्त, अल्लाह मुझे एक दफा जाने दे, शायद मैं कर ही लूँ अब इस दफा जाऊंगी तो, यानी अब यकीन तो नहीं है, अल्लाह ताला तौफीक दे दे तो हो जाएंगे। दूसरा माना उलमा ने किया ताके का, किस लिए जाना चाहता है, इसका पर्पस जाने का क्या है। अब देखें बहुत ही इसमें बड़ा सबक है हम सब के लिए जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, सोचें कि अगर किसी वक्त मौत आ जाए तो उस वक्त अगर आज हम अल्लाह की तरफ को नहीं रजू करते, इस तरफ नहीं आते, तो उस वक्त अल्लाह ना करे कि हम में से कोई इस सिचुएशन में हो जाए कि वो ये कहे कि अब मुझे वापस जाने दें, मुझे एक चांस दे दें। क्यों ये चांस मिलना लेना चाहता है, ये नहीं है कि मुझे अपना कारोबार देखना है, मुझे अपने बच्चों को मिलना है, मुझे किसी की शादी करनी है, मैं ज़रा घर साफ कर रहा हूँ, मैं ज़रा कुकिंग और कर दूँ, मैं ज़रा फलानी शॉपिंग कर लूँ, या अभी तो मेरे दिन आने के नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो नहीं, अभी ज़रा मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दें, अभी तो मैंने बड़ा फ़न करना है। आज तो हमारी फिक्रें हैं, कोशिशें, भाग दौड़ इसीलिए है ना, मुझे थोड़ा और सेविंग करनी है, मुझे अपना घर पे ऑफ करना है, मुझे फलानी चीज़ करनी है, आज तो यही फिक्रें हैं ना, आज तो यही चीज़ें हमारा काम ले रही, हमारा वक्त ले रही हैं ना, आज तो इन्हीं की वजह से हमें फुर्सत नहीं है ना कि हम नेकी का कोई काम कर लें, हम कुरान सुन लें, हम उस घर की कोई तैयारी कर लें, जो जिस जगह हमने जाना है उसके लिए कुछ जमा कर लें, आज हमें ये फुर्सत नहीं है, आज हमारी फिक्रें और हैं, लेकिन उस वक्त इनमें से कोई एक फिक्र भी नहीं होगी, कोई एक भी नहीं, अपने बच्चों तक की नहीं फिक्र होगी इंसान को, जिनके पीछे आप हलकान रहती हैं ना, उनकी भी नहीं फिक्र होगी कि मैं उनका ही कुछ, उनका होमवर्क नहीं कराया, आए वो क्या करेंगे, वो मेरे बगैर कैसे रहेंगे, तो अल्लाह मुझे जाने दे, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो मेरे बगैर कैसे रहेंगे, ये कोई नहीं कहेगा, वो किस पे गम खा रहा है, हाय हाय मैं तो खाली हाथ आ गई हूँ, एक दफा मुझे जाने का मौका मिल जाए, मैं वो सारा कुछ करूंगी जो मैं नहीं करती थी, जो मैंने छोड़ा हुआ था, मेरे प्लान्स तो थे अभी तक किया नहीं था। बहुत सारे लोग प्लान्स बनाते हैं ना, ये करूंगी, वो करूंगी, फलाने साल में ऐसे करूंगी, मैंने ये बड़ी बड़ी प्लानिंगें करते रहते हैं, दर्स होना तो अच्छा कर ही लूंगी, अब मैंने सोचा है कि ये करूंगी, मगर वो सारी प्लानिंग ही प्लानिंग है, आज तक किया कुछ भी नहीं है, अपने लिए आखरत के लिए कुछ जमा ही नहीं किया, हमेशा बस इधर उधर ही जिंदगी गुजारी, जो जो करने ना करने के काम थे बस उन्हीं को करते रहे, हर वक्त यही फिक्र रही, कौन आया है तो कौन गया है, तो किसके घर में क्या हो रहा है, तो किसकी क्या खैर खबर है, आजकल फलानी का क्या मामला चल रहा है, और उसकी टो में लगे रहना, उसकी बस इन्हीं चीजों में वक्त गुजार दिया, तो उस वक्त तो सारे गम फिक्र भूल जाएंगे, उस वक्त तो जो जरूरी जरूरी काम है वो भी नहीं याद आने, सिर्फ एक ही ख्याल होगा, अरे इतनी हसरत, वो काम कर रहा हूं जो मैंने नहीं किया, काश वो वक्त आ जाए दोबारा, वो जिंदगी जिसको आज हम इतना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ना, और मजे से बैठे हैं और इसको कुछ समझ ही नहीं रहे, जो जिंदगी हमें मिली है हम इसको इतना बेकार सा समझते हैं ना, ऐसे ही समझते हैं कि चल मिल भी गई तो क्या, ना खत्म भी हो गई, हमारी मौत भी आ गई तो कौन सी बड़ी बात है, हमें नहीं मौत से कोई डर लगता, हमें नहीं, वो जब एक दफा आ गया ना मलकुल मौत, तब देखें फिर जब आगे के सीन नजर आने लगते हैं ना बंदे को, फिर वो कहता है कि हाय अब वापस भेज दो, मुझे तो पता ही नहीं था वो जिंदगी इतनी कीमती है, जिसको मैंने ऐसे ही गवा दिया, जिस टाइम को मैंने ऐसे ही जाया कर दिया, जिसको मैंने बेकार चीजों में लगा दिया, ला मुझे एक दफा वापस जाने दे, प्लीज एक चांस और दे दे। अब ये हसरत किस वक्त से शुरू हो जाएगी, कयामत के दिन तो होगी होगी इंसान को कि हाय एक दफा वापस चला जाऊं, कितनी जगह हमने पढ़ा है ना कि वो कहेंगे हमें एक दफा वापस भेज दे, लेकिन ये हसरत किस वक्त हो रही है, ये हसरत उस वक्त हो रही है जब मौत का फरिश्ता आया, तब से ही शुरू हो जानी है, तब से ही इंसान हाथ मलेगा, अफसोस करेगा, हाय वापस चला जाऊं, तो अल्लाह ताला क्या वापस भेज देंगे? अब देखें इस 99 आयत से ना एंड तक एक ही मजमून चल रहा है, आप देखेंगे। ये अब एक बंदे की मौत का वक्त आ गया, और ऐसा ही बंदा था जिसने जिंदगी वेस्ट कर दी, और उसको और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नजर आती थी, लेकिन ये कुरान, अल्लाह का दीन, उसकी बात मानना, उसके हुक्मों पे चलना, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी उसकी नजर में। तो अब उसका हाल देखें कि क्या हो रहा है, अब कैसे वो गमजदा हो रहा है। तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे? कल्ला, हरगिज नहीं, नहीं वापस तो नहीं जा सकते। ये जो एक तरह एक दफा आ गया ना वहां पे, जिसने एक दफा ये इस जिंदगी की सरहद को क्रॉस कर लिया, इस दुनिया की सरहद को पार कर लिया, वापस नहीं वो कभी आ सकता। कभी आपने देखा किसी को वापस आते? चाहे कोई कितना भी नेक हो या कितना भी बद हो, कितना भी बड़ा बादशाह हो या गरीब हो, किसी को नहीं आप वापस आते हुए देखेंगे। जो चला गया, वंस गॉन तो गॉन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना कलिमतुन हुआ कायलुहा, ये तो सिर्फ तुम्हारी एक बातें ही हैं जो तुम कहने वाले हो, एक बातें हैं जो तुम बना रहे हो, वरना तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास कितने चांस थे, कितनी मैंने तुम्हें जिंदगी दी, 50 ईयर्स की, 60 ईयर्स की, इतनी जिंदगी तुम्हें मिली, तुम्हें कभी नहीं ख्याल आया था। जिसने करना होता ना वो उस वक्त कर लेता। हम तो दुनिया में नहीं लोगों को छोड़ते, हम तो दुनिया में ही कह देते हैं, हाँ तुमने रहने दो अब ये काम करने को, करना होता ना मैं तो इतना टाइम तुम्हें दिया था, तुमने कर लिया होता, अब छोड़ो। जब हमें किसी पे गुस्सा आता है तो अब मैं खुद ही कर लूंगी, अब कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पे ये डांट पड़ेगी, इन्नहा कलिमतुन हुआ कायलुहा, ये तो सिर्फ एक बात है जो ये कहने वाला है। अब वो बेग कर रहा है, मिनते कर रहा है, हाथ जोड़ा है, मुझे एक दफा जाने दो, एक दफा मुझे लौटा दो। कितनी बड़ी इबरत है, हमारे ऊपर तो ये वक्त अभी नहीं आया, लेकिन हम फिर भी अल्लाह ताला ने बता के यहाँ पे ना हमारे ऊपर कितनी बड़ी रहमत की। अब हम खड़े होते हैं उसके पास, हम देख रहे हैं वो जा रहा है, वो उसकी नज़र फिर गई है, उलट गई है, अब वो अगली दुनिया के सीन देख रहा है, वो पता नहीं वहाँ पे क्या क्या बैक कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, मिन्नतें कर रहा है, हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन उसकी बेबसी देखें, उसकी लाचारी देखें, हमें कितना कुछ नहीं सिखा रही, ये इंसान कितना बेबस है। आज एक एक उस लम्हे को तरस रहा है, एक एक उस सांस को तरस रहा है जो उसके पास जिंदगी में थी, उसने उससे फायदा नहीं उठाया। आज वो ख्वाहिश कर रहा है कि हाय वो एक लम्हा ही मिल जाए, वो एक घंटा जो मुझे मिला हुआ था, एक घंटा ही दे दो, 1 आवर ओनली, मैं कोई सदका खैरात कर दूं, मैं कोई अच्छी सी नमाज पढ़ लूं, मैं वो सारे काम कर लूं जो मैं सुनती थी, मैं नहीं करती थी, इग्नोर करती थी, अल्लाह वो मैं थोड़ी सी वो जिंदगी गुजार के आ जाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं तुझे ये कहती कि मुझे मेरे बच्चों की खातिर भेज दे, मैं नहीं तुझे ये कहती कि मुझे जॉब के लिए भेज दे, मैं नहीं तुझे ये कहती कि मुझे मेरा करियर बनाने के लिए भेज दे। आज वो सारी बातें कहाँ चली गई, क्यों नहीं वो यहाँ पे कह रहा? मैं नहीं ये कहती कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे अभी स्कूल जाना है, मुझे अभी तालीम हासिल करनी है, मेरी अभी शादी होनी है, मेरी अभी फलाने अरमान रहते हैं। मैं नहीं तुझे अपने अरमानों का सवाल नहीं करती कि मेरी तो बड़ी ख्वाहिशात हैं, आज तो यही कहते हो ना, मेरे तो बड़े अरमान हैं, अभी अभी कैसे इस तरफ आ जाऊं, आज तो यही कहती हो, क्यों नहीं मांग रहा उस वक्त वो अरमानों को पूरा करने की ख्वाहिश, क्यों नहीं है? क्योंकि अब इसने जान लिया कि वो तो सब ऐसे ही था, असल तो ये दुनिया है, किसके लिए मैं कुछ भी करके नहीं लाई, अभी तो मुझे बड़ा कुछ करना था, आए वक्त सारा चला गया, आए तुझे जिंदगी ढूंढ के लाऊं कहां से, फिर तो ये यही कहेगा ना, चले गया वो वक्त, ला कितना वक्त हम जाया कर देते हैं, कितने कीमती हैं ये लम्हे, कितनी कीमती है ये जिंदगी, कितना कीमती है ये एक एक सांस जो आ रहा है, क्योंकि इसकी कॉम्पेंसेशन हो ही नहीं सकती, इसका अजाला हो ही नहीं सकता। जिंदगी में होश के, इंसान की जिंदगी के 3 मराहल हैं, एक मरहला तो ये है जो हमें मिला हुआ है, जो हम गुजार रहे हैं, ये पहला मरहला है ये दुनिया का, उसके बाद होश का ही मरहला होगा, कब्र का दूसरा मरहला, और तीसरा मरहला होगा आखरत का, वो भी होश का होगा, ये तीनों मराहल होश के मराहल हैं, मगर ये जो सबसे शॉर्टेस्ट है ना वो पीरियड है ये दुनिया का पीरियड, क्योंकि कब्र भी जाहिर है जब तक कयामत नहीं आएगी, कब्र की जिंदगी ही है ना, और उसके बाद तीसरा जो आखरत है वो तो कभी खत्म ही नहीं होनी, इन तीनों होश के मराहिल में सबसे शॉर्टेस्ट दुनिया का मरहला है, लेकिन कब्र का भी और आखरत का भी, ये सारे मराहिल डिपेंड किस पे करते हैं? इस दुनिया के मरहले पे। ये शॉर्टेस्ट पीरियड है, लेकिन हमारी अगले दोनों जो जिंदगियां हैं, हमारी जिंदगियां, एक जिंदगी नहीं, दोनों जिंदगियां इस जिंदगी पर डिपेंड करती हैं कि हम इसको कैसा गुजार के जाते हैं। तो अब नहीं वापस जा सकते हैं। बड़े जिंदगी में मौके आए, सुधरने के मौके आए, बड़े जिंदगी में गम के भी आए, खुशियों के भी आए, तुम्हारे पर मुसीबतें भी आईं, तुम चाहते तो अपनी जिंदगी बदल लेते, लेकिन तुमने नहीं बदली। बड़े तुम्हें चांस दिए, बड़े तुम्हें मौके दिए। अमे वराइहिम बरजखुन इला यौमि युबअसून। अब तो इनके पीछे क्या है? बरजख है, उस दिन तक जब उठाए जाएंगे। तो बरजख क्या है? एक ट्रांजिशन पीरियड है, एक ऐसा वक्त है, एक ऐसा, या पर्दा कह लें, एक ऐसा पर्दा है कि जो पड़ जाता है, उसके बाद इंसान आगे भी नहीं जा सकता, क्योंकि आगे क्या है? आखरत। अभी कयामत तो आई नहीं, तो वो कयामत में भी नहीं जा सकता कि हशर का दिन हो जाए, हिसाब किताब हो जाए, वो जन्नत में चला जाए, वो जिंदगी नहीं है। आगे की जिंदगी, आगे के मरहले में भी नहीं जा सकते, और ना ही पीछे जा सकते हैं। पीछे क्या है? ये दुनिया की जिंदगी, वहां पे भी नहीं आ सकते। ये भी एक जिंदगी है, हयाते बरजख कहते हैं इसको, लेकिन ये ऐसी जिंदगी नहीं जैसे ये दुनिया की जिंदगी है, बल्कि एक और ही जिंदगी है जिसमें इंसान को खुशी का भी पता चलेगा, अगर उसको कोई राहत मिलती है उसका भी, आराम का भी पता चलेगा, और कोई अजाब मिलता है तो उसका भी पता चलेगा, वो फील कर सकेगा। अब ये ऐसे ही समझ लें जैसे ट्रांजिशन पीरियड समझ लें उसका, जैसे ट्रांजिट लाउंज होता है ना एयरपोर्ट्स में, आपके पास अगर वीआईपी का टिकट है, आपको वीआईपी ट्रांजिट लाउंज में बिठाया जाएगा, अगर आपके पास इकोनॉमी क्लास का, इकोनॉमी क्लास के ट्रांजिट लाउंज में बिठाया जाएगा। आपका राहत आराम उसी पे डिपेंड करता होगा जैसा टिकट आपके पास होगा। तो जैसे आमाल होंगे वैसे ही बरजख की जिंदगी होगी, और जिसको किसी ने, जानवर ने खा लिया, उसकी बरजख वही जानवर का पेट बन गया, जिसको जला दिया गया, उसकी राख को उड़ा दिया गया, उसकी बरजख वही है, जिस जहां पे भी वो मौजूद है। आज तक जितने इंसान, कईयों के तो जिनको जानवरों ने खा लिया, वो जानवर भी मर गए हैं, वो जानवर भी मट्टी हो गए, उनकी भी हड्डियां का चूरा चूरा हो गया, उनकी बरजख वही है, तो वो वहां पे होंगे। तो ये भी एक मरहला है, ये भी एक जिंदगी है। अब इस जिंदगी में हम कहाँ होंगे ये भी डिपेंड करता है कि आज हम क्या कर रहे हैं। फिर आगे कयामत का मंजर अल्लाह ने दिखा दिया, फैज़ा नुफिखा फिस्सूरी फला अनसाब बैनहुम यौमा इज़िन वला यतसाअलून। फिर अब ये बरजख से निकल के अब नेक्स्ट मरहला कौन सा आया? कयामत का। सूर फूंक दिया जाएगा तो नेक्स्ट लाइफ शुरू हो गई। अब एक आपको दुनिया की जिंदगी दिखा दी गई, एक बरजख दिखा दी गई, अब थर्ड लाइफ स्टार्ट हो रही है। जब सूर फूंक दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा आपस में, सब रिश्ते कट गए, सब रिश्ते खत्म हो गए। अरबों के अंदर हसब नसब का बहुत समझा जाता था इसको, कि किसी का हसब नसब क्या है, और एक दूसरे के लिए जान देते थे। एक कबीले का एक बंदा होता था ना, वो दूसरे के लिए ऐसे जान देने को उसके काम आने पे फख्र महसूस करता था, और लोग अपने नसब पे भी बहुत फख्र करते थे। जब एक दूसरे से मिलते थे, पूछते थे, आप किस कबीले से हैं, आपका नसब क्या है? आखिरत में कोई नहीं सवाल करेगा, आप कितनी बड़ी आलिमा थीं, कितनी बड़ी आप बेगम साहिबा थीं, कितनी हर मैजेस्टी थीं, कितनी बड़ी प्रिंसेस थीं, कोई नहीं पूछेगा। इस दिन इतनी शदीद वहशत होगी, खौफ होगा कि कोई दूसरे से पूछेगा भी नहीं। और न, वला यतसालून, ना एक दूसरे से सवाल करेंगे, पूछेंगे नहीं। और यहाँ पे सवाल करने का माना क्या है? एक सवाल करना मदद के लिए भी तो होता है ना, ना एक दूसरे को मदद, एक दूसरे से तलब करेंगे। अच्छा, एक और जगह आता है सूरह साफात में कि वो एक दूसरे से सवाल करेंगे, फअक्बल बादुहुम अला बादिन यतसालून, एक दूसरे से सवाल करेंगे। तो फिर इन दोनों में क्या, यहाँ पे है कि सवाल नहीं करेंगे, वहाँ पे सवाल करेंगे? तो असल बात यह है कि जैसे हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि पहले सूर के वक्त कोई किसी से सवाल नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त कोई ज़िंदा भी नहीं होगा, ना इनके दरमियान कोई रिश्ता होगा, ना वो सवाल जवाब करेंगे, फिर उसके बाद सवाल जवाब करेंगे जब दोबारा दूसरा नफा फूका जाएगा। या ये भी कहा जाता है कि जब वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तब एक दूसरे से हाल चाल पूछेंगे। तो दूसरा नफा फूंकने के वक्त क्या सवाल जवाब हो सकते हैं, मसलन है कि किसने हमें हमारी कब्रों से उठाया या इस तरह की बातें कुछ। तो कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे मौके होंगे कि कुछ मौके ऐसे होंगे जिसमें बिल्कुल ही एक दूसरे का होश नहीं होगा, कुछ मौके ऐसे होंगे कि फिर जहाँ पे ज़रा मुसीबत लाइट होगी, ज़रा उनको कुछ मौका मिलेगा, फिर एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होंगे। और मतलब डिफरेंट हौलनाकियाँ हैं ना कयामत की भी। अब जैसे वो हदीस आती है कि हज़रत आयशा रो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा कि क्या चीज़ ने, किस चीज़ ने तुम्हें रुलाया, तो क्या फरमाया था कि मुझे जहन्नुम की आग ने रुला दिया। तो आप पूछा फिर उन्होंने, या रसूल अल्लाह आप हमको वहाँ पे याद रखेंगे, आपने फरमाया तीन मौके तो ऐसे हैं जिनमें कोई किसी को याद ही नहीं रखेगा, कोई पूछेगा ही नहीं कोई कहाँ है। एक तो जब आमाल नामे नशर किए जाएंगे, किसी को जब तक राइट हैंड में नहीं मिल जाता ना उसको नहीं होश होगा दूसरा कहाँ है। दूसरा जब मीज़ान कायम होगा उस वक़्त भी नहीं किसी को दूसरे का होश रहेगा। और तीसरा जब पुल सिरात के ऊपर से गुजर रहे होंगे तब भी नहीं किसी को किसी का होश होगा। तो ये मराहिल ऐसे हैं जिनमें तो इतनी ज़्यादा वहशत होगी कि कोई किसी को जानता ही नहीं होगा कोई कहाँ है। और इसी तरह सूरह मारिज में अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 6 से आगे तक आप देख सकते हैं कि इन्नहुम यरौनहु बाईदा, वो इसको दूर समझते हैं, व नराहु करीब, और हम इसे करीब समझते हैं। और जिस दिन आसमान तेल की तिलछट की तरह हो जाएगा और पहाड़ रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे, और कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा, हालांकि एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे, गुनाहगार उस दिन के अजाब के बदले फिदिये में अपने बेटों को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने खानदान को जो उसको पनाह दिया करता था, और रुए जमीन के सब लोगों को देना चाहेगा ताकि ये निजात से बच जाए। कहेगा मेरे बदले में, किसी को बचाना तो दूर की बात है, मेरे बदले में इन सब को जहन्नुम में डाल दो लेकिन मुझे बचा लो। तो कोई रिश्ता तो रहेगा ही नहीं। कहेगा मेरे बीवी बच्चों को भी डालो इसके अंदर आग में, आग को देखते ये हालत हो जाएगी उसकी। तो अब आप सोचें कि ये रिश्ते जिनके लिए इंसान अपने रब को छोड़ता है, उन रिश्तों का भी इंसान खुद अपने मुंह से बोलेगा, कोई नहीं कहेगा, खुद अपने मुंह से कहेगा इनको डालें। और हमने पढ़ा हुआ है ना सूरह आबासा में, फैजा जाअतिस्साखा, जब कान बहरे कर देने वाली कयामत आ जाएगी, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौम इज़िन शअनुन युग्नी, उस दिन इंसान भागेगा अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से, अपनी औलाद से, और इनमें से हर एक को उस दिन ऐसी अपनी पड़ी होगी, ऐसा उसको फिक्र होगी कि उसको अपनी ही पड़ी होगी, वही उसके लिए काफ़ी होगी, दूसरों से तो वो बिल्कुल ही बेनियाज होगा। आप सोचिए, अब जिस वक़्त आपके सामने अखी और उम्मी और अबी और साहिबती और बनी इन सब की बात आए, तो सोचे एक एक बंदा सोचे, अपनी माँ को सोचे, अपने बाप को सोचे, अपने बहन भाइयों को सोचे, अपने शौहर को सोचे, अपने बच्चों को सोचे, जिनकी खातिर हम रब के हुक्मों को तोड़ते हैं ना, यही रिश्ते होते हैं ना जिनको खुश करने के लिए, जिनकी रज़ा के लिए, जिनकी फ़िक्र में हम अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हैं, वो कर देते हैं जो अल्लाह ताला ने मना किया है। अब सोचें कि इनमें से क्या एक भी बचा सकेगा? ये जो अल्लाह से दूर कर रहे हैं ये तो वहां पे काम नहीं आएंगे। फमन सकुलत मवाजीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो जो कोई भारी हो गए उसके पलड़े तो यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। भारी हो गए पलड़े यानी क्या मतलब? अरे उसके मीज़ान के अंदर उसकी नेकियां बढ़ गईं, नेकियों का वज़न हो गया। इसका मतलब है कि बाज़ ऐसे भी होंगे जिनके नेकियों का कोई वज़न नहीं होगा, वो हैं जो रियाकार थे, रियाकारी से की गई नेकियां ज़ाया हो जाएंगी, बेवज़न हो जाएंगी। अल्लाह अकबर, मन खफत मवाजीन हूँ फौलाए कल्लजीना खसिरु अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून, जिनके पलड़े हल्के हो गए यानी नेकियां बेवजन हो गई, हल्की हो गई, तो यही लोग हैं जिन्होंने खसारे में डाला अपनी जानों को। जहन्नुम में जाएंगे, हमेशा वहीं रहेंगे। अब्दुल्ला बिन मसूद का कौल है कि कयामत के दिन एक एक बंदे मर्द और औरत को माशर के मैदान में लाया जाएगा और तमाम अव्वलीन और आखिरीन इस भरे मजमे के सामने खड़े कर दिया जाएगा इनको। फिर अल्लाह ताला का एक मुनादी ये निदा करेगा कि ये शख्स फलां बिन फलां है, अगर किसी का कोई हक इसके जिम्मे है तो सामने आ जाए और इससे अपना हक वसूल कर ले। पता है क्या होगा फिर? ये वो वक्त होगा कि बेटा इस पर खुश होगा कि मेरा हक मेरे बाप के जिम्मे निकल आया, मेरा हक मेरे बाप ने देना है, और बाप का कोई हक बेटे पर हुआ तो बाप खुश हो जाएगा कि आज मैं बेटे से वसूल करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। इसी तरह मियाँ बीवी और बहन भाई, जिसका जिस पर कोई हक होगा, आज तो बड़े शौक से कह देते हैं ना कि कोई बात नहीं है, ये है उसके लिए कर लिया, उस दिन खुश होंगे जिसका जिस पे कोई हक होगा तो ये मुनादी सुनकर उससे वसूल करने पर आमादा होंगे, छोड़ेगा कोई नहीं और खुश होंगे। यही वो वक्त होगा जिसके मुतल्लिक की आयत आई है कि फलां साबा बैना हूं, उस दिन कोई रिश्ता ही नहीं होगा, कोई काम नहीं आएगा, कोई रहम खाएगा ही नहीं किसी पे, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, कौन किस पे रहम खाएगा जब जहन्नुम सामने नजर आ रही होगी, कौन जलना चाहेगा? ये प्यारे रिश्ते भी कैसे पराए हो जाएंगे उस दिन, मुझे कौन बचाएगा और आपको कौन बचाएगा बताइए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा देना। तो जब तो बहुत ज्यादा हैबत होगी ना, हॉल का आलम होगा, तब कोई किसी का हाल नहीं पूछेगा, जब वो हैबत कम होगी तब हाल पूछेंगे। और फिर देखें हल्का और भारी होना, अब कई जगह पे तो ये आया है कि आमाल तुलेंगे, और दूसरी तरफ ये भी आया है कि इंसानों को भी तोला जाएगा, इंसान को भी बिठाया जाएगा तराजू में। क़यामत के दिन किसी इंसान का वज़न दुनिया में चाहे कितना भी भारी भरकम हो, एक एक मच्छर के पर के बराबर होगा। तो ये भी हो जाएगा, ऐसे भी लोग होंगे, और भी चीज़ों को तोला जाएगा, मसलन ये स्याही जिससे आप लिखते हैं इसको भी तोला जाएगा। इसी तरह क़यामत के दिन एक शख्स होगा, उसके वज़न किया जाएगा अमाल का, तराजू के पलड़े में उसके रखे जाएंगे, तो ये नेक अमाल उसके हल्के हो जाएंगे। फिर एक चीज़ ऐसी लाएगी जो बादल की तरह होगी, उसको भी उसकी नेकियों के पलड़े में रख दिया जाएगा, तो ये पलड़ा भारी भारी हो जाएगा। उस वक्त इस शख्स से कहा जाएगा कि तुम जानते हो ये क्या चीज़ है जिसने तुम्हारी नेकियों का पल्ला भारी कर दिया? वो कहेगा मुझे तो नहीं पता। ये बताया जाएगा ये तेरा इल्म है जो तू लोगों को सिखाया करता था, जो तू लोगों को सिखाता था ना, ये वो इल्म है। आज तो लोग कहते ना देखो जरा ये ऐसा, लेकिन कभी भी डिसहार्ट ना हो, आगे पहुंचाएं, आगे बताएं, ये तेरा वो इल्म है जो तू सिखाता था। तो इस दिन लोगों को भी तोला जाएगा, हो सकता है सारी चीजें हो, अमल भी तोले जाएं, लोगों को भी तोला जाए, इंसानों को भी, उसके अंदर अपना भी उसका वजन हो। तो कुफार जो हैं उनके नेक आमाल भी जो होंगे वो ईमान ना होने की वजह से बेवजन हो जाएंगे, नेक जो उन्होंने नेकियां भी की थी, और जो गुनाहगार मुसलमान है उनमें जो नेकियों का पलड़ा है, जिनका उनके भी नेकियों के पलड़े में भी आमाल होंगे, सैयाद के पलड़े में भी आमाल होंगे, जाहिर है बुराइयां भी होंगी भलाइयां भी होंगी, तो इसमें उनका नहीं जिक्र आया क्लियरली। इसकी वजह ये उलमा बताते हैं शायद कि जब कुरान नाजिल हो रहा था ना, उस वक़्त जितने मोमिन सहाबाए कराम थे वो सब के सब कबीरा गुनाहों से पाक थे, अगर किसी से कोई गुनाह हो भी जाता था तो फौरन वो तौबा करके उसको दुनिया में ही वो कोशिश करता था कि धुल जाए। तो उनका जिक्र तो फिर कुरान पाक में एक और आयत में आता है, खलतु आमलन सालेहन व आखरा सैयन, ऐसे लोगों का जिक्र है जिन्होंने बद अमाल भी किए नेक भी किए, नेकियां बदियां सारी की। मुझे तो लगता है हम इन्हीं में से हैं। हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि क़्यामत के रोज़ इन लोगों के अमाल का हिसाब इस तरह होगा कि जिस शख्स की नेकियां उसके गुनाहों से बढ़ जाएंगी, ख्वाह एक भी नेकी मिकदार से बड़े वो जन्नत में जाएगा, और जिस शख्स की गुनाह नेकियों से बढ़ जाएंगे, ख्वाह एक भी गुनाह की मिकदार से बड़े, वो दोजख में जाएगा। मगर उस मोमिन गुनाहगार का दोजख में दाखिला किस लिए होगा? पाक करने के लिए होगा। जैसे लोहे को, सोने वगैरह को आग में डालकर मैल और जंग से साफ कर दिया जाता है, इसका जहन्नुम में जाना भी ऐसा ही होगा। जिस वक्त जहन्नुम में जाके इसके गुनाह धुल जाएंगे, अब जाहिर है जितने गुनाह होंगे उतनी देर वो धोने में भी लगेगी, तो तब जब वो धुल जाएंगे, साफ होगा, तब जन्नत में जाने के काबिल बनेगा। तो कल मैं ये पढ़ के ना इतना ज्यादा मुझे तकलीफ हुई, मैंने सोचा अल्लाह ताला हम तो इतनी हिम्मत नहीं रखते कि थोड़ी देर भी जहन्नुम में जाएं, सिर्फ इतनी देर के लिए भी कि जितने में गुनाह धुलें। दुनिया की आग बड़ी देख के या चूल्हे की आग देख के डर लगता है, अपने आप को बचाते रहते हैं कहीं कोई कपड़ा कोई कुछ आग के ऊपर ना लग जाए, कि आग ना लगे, इतना हमें आग से डर लगता है। स्मोक डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं और क्या क्या चीज़ें, हम कितनी एहतियात करते हैं ना। छोटी सी आग है जो चूल्हे में जलती है, और उस बड़ी आग का क्या कहना जिसको देख के फरिश्ते भी रो रहे हैं। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि क़्यामत की मीज़ान अमल ऐसा सही वज़न करने वाली होगी कि एक राई के दाने के बराबर भी कमी बेशी होगी तो पलड़ा झुक जाएगा या उठ जाएगा। इतना इतनी वो यानी छोटे से छोटे अमल को भी डिटेक्ट कर लेगी। इवन यहाँ तक हदीस में आता है कि जूं के अंडे के बराबर भी अमल होगा, जूं के अंडे के बराबर, तो उसको भी मीज़ान में उसका भी वज़न होगा, उससे भी मीज़ान झुकी या झुक सकती है या उठ सकती है। समझ आई? इतने सी चीज़ का भी अमल अगर है, तो फिर आप सोचें कि फिर जो हमारे अमल हैं, जो हम बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े काम करते हैं, फिर उनका क्या वज़न होगा। तो तलफ़ वुजूहहुम नार, फिर जब ये आग में चले जाएंगे, अगर अल्लाह ना करे, अभी तो हमें पता ही नहीं हमारे पास क्या है, क्या हमने कमाया है, कितना हम ज़ाया कर चुके हैं अपने ही हरकतों की वजह से, अपनी नेकियां कई दूसरों को दे चुके हैं, कई अपनी नेकियां जो हमने की रियाकारी की वजह से हम उड़ा चुके हैं, कई हमने जो नेकियां की वो हमने दूसरों पे एहसान जता दिए तो उनको हमने उड़ा दिया, कई नेकियां हमारी तो जो हम बड़ी मान से बैठे हुए हैं, मैंने फलाना हज भी किया और उमरा भी किया और मैंने फलान नमाजें भी पढ़ी और तहज्जुदें भी पढ़ी और इतने रोजे रख लिए और इतने मैंने नफल पढ़ लिए, हमें नहीं पता कि कई जो हैं वो उड़ चुकी हैं, ख़त्म है, वहां पे हैं ही नहीं है, ये तो अभी हमें पता ही नहीं है ना। हमारे अमाल का वजन कितना है ये भी नहीं पता, नियतों में कहीं खराबी आ गई और वो सारे के सारे अमल को खराब कर गई, ये भी नहीं पता, कौन सा कबूल हुआ कौन सा नहीं हुआ नहीं पता, हमारे मवाजीन हल्के होने या भारी होने नहीं पता। इसीलिए हजरत राबिया बसरी के पास जब हजरत हसन बसरी ने रिश्ता भिजवाया, तो उन्होंने पूछा कि तुम मुझे 3 सवालों के जवाब दे दोगे तो तुमसे शादी कर लूंगी। ने कहा क्या सवाल है? कहा मुझे ये बस बता दो कि जब अमालनामे नशर किए जाएंगे तो फिर उस वक्त मेरे दाहिने हाथ में आएगा या बाएं हाथ में। कहते तो मुझे तो नहीं पता। कहा अच्छा अमाल तोले जाएंगे, मेरी नेकियां बढ़ेंगी या घटेंगी? कहते नहीं मुझे तो नहीं पता। अच्छा जब मैं पुल सिरात से गुजर रही होंगी, पार हो जाऊंगी या अंदर ही गिर जाऊंगी जहन्नुम के? कहते मुझे नहीं पता। तो कहते फिर जाओ, फिर मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे तैयारी करनी है। जो जितना पीछे रह जाता है उसको उतनी तेज दौड़ लगानी चाहिए ना। हम तो वो लोग हैं जो पीछे रह गए हैं, क्योंकि हमें होश ही बहुत देर से आया, अब हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, बहुत तेज होनी चाहिए ना, क्योंकि हम तो अब पढ़ रहे हैं, हमें तो अब पता चल रहा है, कोई बचपन से तो नहीं हमें ये बातें पता थी, फिर अब आराम से बैठे या और तेज भागे। तलफा वुजूहहुम नार, झुलसा देगी उनके चेहरों को आग। चेहरे का जिक्र क्यों आया, हालांकि आग ने तो पूरे वजूद को ही खाना है। चेहरे का जिक्र खास तौर पे इस वजह से आया क्योंकि चेहरे पे इंसान की शनाख्त है। चेहरा वो चीज़ है, आज देखें पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री करोड़ों की चल रही है सिर्फ इस चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, चमकाने के लिए, फ्रेश रखने के लिए। कितने पार्लर हैं चल रहे हैं, कितनी इंडस्ट्रीज हैं चल रही हैं, कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में यानी इस सनत में काम कर रहे हैं सिर्फ एक इस छोटे से चेहरे के लिए, इस एक बालिश्त के चेहरे के लिए कितना कुछ काम हो रहा है। इसको आग पकड़ेगी सबसे पहले चल के, इसको जलाएगी, और ये चेहरे कैसे हो जाएंगे? वहुम फीहा कालिहून। और वो इसमें तेरी चढ़ाने वाले हैं, यानी तेरी चढ़ाने वाले हैं मतलब यानी क्या है कि इसके बारे में पूछा किसी ने कि ये इसका मतलब क्या है, तो जैसे मैंने क्या आपको बताया इसका माना वैसे होता है कि होंठों का सुकड़ के दांतों का जाहिर हो जाना दूसरा मतलब है तेवरी चढ़ाना, क्योंकि जब होंठ सुकड़ जाएंगे ऊपर को जाएंगे दांत जाहिर है बाहर निकल जाएंगे और तेवरी ऐसे लगेगी जैसे रिंकल्स पड़ गए। तो इसके बारे में जब किसी ने पूछा था, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया क्या तुमने भुनी हुई सिरी नहीं देखी? जब एक बकरे की सिरी को आग के ऊपर भुना जाता है तो पता नहीं आपने कभी देखा या नहीं, उसके दांत जाहिर हो जाते हैं क्योंकि स्किन ऊपर को चढ़ जाती है जलने की वजह से, खिंच जाती है। तो जहन्नुम का तो एक झोंका ही ऐसा होगा कि एक झोंका लगने से ही दुनिया के तो सारे ऐश भूल जाने हैं, सब कुछ भूल जाएगा। एक हदीस में आता है पहले ही शोले की लपट उनका सारा गोश्त हड्डियों से अलग करके उनके कदमों में डाल देगी, वो वहां बदशक्ल हो जाएंगे और दांत निकले हुए होंगे। आपने स्केलेटन देखा? उसमें तो बिल्कुल ही गोश्त नहीं होता लेकिन कैसे दांत निकल रहे होते हैं ना, कितना बदशक्ल लगता है। एक दफा टीवी पे दिखाया किसी औरत को, अल्लाह ताला माफ फरमाए, कि उसके चेहरे पे किसी ने तेजाब फेंक दिया था। अब वो ऐसा एकदम से जो उन्होंने दिखाया तो वो इतना भयानक मंजर था ना कि चीख निकल गई, हाय ये क्या, एकदम खुद इंसान मुंह फेर लेता है डर के मारे, इतना खौफनाक मंजर होता है। और ये ऐसे होंगे, ये ऐसे बदशक्ल हो जाएंगे, इन्हीं चेहरों को संवारते थे ना, हाय इस जिस्म की खूबसूरती के लिए और इसको हसीन बनाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता और कैसे कैसे अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है ना। कहा जाता है कि जब लोग आएंगे कुछ लोग जो शिफात के लिए और इनको यहाँ पे भेजा जाएगा कि कुछ को निकाल लाओ जहन्नुम से, तो वो जब देखेंगे जहन्नुम के अंदर तो पहचान नहीं पाएंगे। ये लोग शोर मचाएंगे कि हम वो हैं, हम वो लोग हैं, लेकिन वो इनको देख के कहेंगे नहीं तुम वो नहीं हो, हम तो तुम्हें पहचानते ही नहीं हैं, हमें नहीं पता तुम कौन हो। ऐसे चेहरे बदल जाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अस्तग़फिरुल्लाह। और इनका जुर्म क्या था? अब आगे ये नहीं कहा गया कि तुम ईमान नहीं लाते थे ना, देखो तुम्हारा ये हशर हुआ, तुम ऐसे नहीं करते थे ना, तुम्हारे साथ ये हुआ। देखें यहाँ पे क्या कहा गया, ज़रा वो लोग जो इस कुरान से बचते हैं ना, इसकी तरफ नहीं आते और उनके पास बहुत मसरूफियात है, वो ज़रा गौर से सुने। अल्लाह ताला ने फरमाया अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, क्या नहीं थी मेरी आयतें पढ़ी जाती तुम पर जो तुम इनको झुटलाया करते थे, तुम मानते ही नहीं थे, तुम इस तरफ तो आते ही नहीं थे ना। ये इंसान के बदशक्ल होने, डरावने होने, जहन्नुम में जाने की वजह क्या बताई गई? तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थी ना, तुम्हें पढ़ पढ़ के सुनाते थे, तुम मानते ही नहीं थे, तुम्हारे पास आई नहीं थी, मेरी आयतें नहीं आई थी। बहुत से तो आज सुनी नहीं, सुनने को ही तैयार नहीं है ना, वो सुनना ही नहीं चाहते, नहीं कुरान ना सुनाओ, हमने नहीं सुनना, साफ ही मुंह से कहते हैं। और बास ऐसे भी हैं जो आज सुन के भी अनसुनी कर रहे हैं, ये क्या फर्क पड़ता है? देखिए अगर हम सबको ये पता चल जाए कि जन्नत कहाँ पे है, उसका एड्रेस पता चल जाए, उसका क्या ले जाने के वहाँ पे तरीके हैं। जब तक यही पता ही नहीं चलेगा तो तब तक हम अमल कैसे करेंगे? या तुम्हारे पास मेरी आयतें नहीं पढ़ी जाती थी, तुम्हें पता नहीं था कि जहन्नुम में आने के लिए क्या काम करने होते हैं और जन्नत में जाने के लिए क्या काम करने हैं? हम यही बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि हम क्लास ले रहे हैं, अब और इससे ज्यादा हम क्या नेकी करें? अब और तो कोई जरूरत है ही नहीं है, जिंदगी बदलने की तो जरूरत ही नहीं है। हम हफ्ते में एक बार ही 3 घंटे एडजस्ट कर रहे हैं ना, इसको ही हमारी तरफ से काफी समझें, इससे ज्यादा अब और हम क्या करें? कब तक हम एक कान से सुन के दूसरे से निकालते रहेंगे? अल्लाह ताला ने फरमा दिया, उनका जुर्म बता दिया, और सूरह ताहा में भी हम पढ़ चुके हैं ना, 124-125 आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा तो बेशक उसके लिए ये दुनिया की जिंदगी भी तंग होगी और हम इसकी क्यामत के दिन भी अंधा उठाएंगे। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? मैं तो दुनिया में देखता था। वो फरमाएगा, इसी तरह तुम्हारे पास मेरी आयतें आती थी ना, तो तुमने भी उनको भुलाया हुआ था, इसी तरह हम आज तुम्हें भुला देंगे। इसी तरह हम बदला देते हैं जो हद से गुजर जाए और जो हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाए। और अलबत्ता आखरत का अजाब शदीद तरीन है और ज्यादा बाकी रहने वाला है। तो देखें, हम आयतें पढ़ी जाती हैं हमारे सामने, बाज़ तो सुनते नहीं और बाज़ सुन के अनसुनी कर रहे हैं। कान में जा रहा है, नहीं नहीं पता क्या जा रहा है। इनका कसूर यही है, सुन के अनसुनी की। पढ़ी जाती थी इनके सामने आयतें, आज तो मुसलमान का ये हाल हो गया, इससे भी गए गुजरे हो गए कि नहीं सुननी ही नहीं है हमने तो। इनके सामने तो पढ़ी जाती थी, सुनाया जाता था इनको, सुनी थी इन्होंने, फिर माना ही नहीं, किया ही नहीं अमल, सोचा ही नहीं कभी कि इस तरफ आना है। वो बहुत बस हो गई है, ये हम इतनी बड़ी नेकी है हमारी, हम आए हैं, हमने वक्त निकाला, अब इससे ज़्यादा क्या करें? अब वो जवाब क्या देंगे? ये नहीं कहेंगे कि हमने सॉरी हमने सुनी नहीं थी। कहते हैं, कालू रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, कि हाँ मतलब सुनी तो थी लेकिन हमारे पर क्या हो गई, गालिब आ गई हम पर, हमारी बदबख्ती, हमारी बदबख्ती हम पे गालिब आ गई। शिकवतुना, बदबख्ती में क्या है? लज्जतें दुनिया की और दुनिया की ख्वाहिशात, इन्होंने हमें ऐसा घेर लिया, ऐसे ही हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी, हमने अल्लाह की आयात को अनइम्पॉर्टेंट समझ लिया, हमने मानना ही नहीं। अल्लाह अकबर, यानी वो अपनी बदबख्ती किस चीज़ को कह रहे हैं? ये जिन चीज़ों में आज हम पढ़े हैं, ये रब की आयतें आई थी, वक्त ही नहीं था हमारे पास। आज भी लोग देखें अल्लाह के कलाम से क्यों मुंह मोड़ते हैं, क्या कहते हैं कि हम क्यों नहीं आ रहे इस तरफ? हमारे पास घर के जी और भी धंधे हैं, ये है वो शुगल है वो, कोई कहता है मैं पढ़ रही हूँ, कोई कहता है मैं कहाँ से टाइम लाऊं, मेरे पास घर के इतने काम हैं, तो कोई कुछ कहता है, कोई कहता है जॉब है। आप आखिर इतना लंबा कौन सुने, ये तो लेके ही बैठ जाती हैं, हमने अब अपने भी तो काम करने होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये इनका कुरान सुनाना? क्या वाकई ज़िंदगी इसीलिए मिली है कि घर के काम काज करें या डिग्रियां हासिल करें? अगर यही है ना ज़िंदगी का मकसद, मैं ये नहीं कह रही कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, मगर क्या यही अगर ज़िंदगी का मकसद है, फिर आपकी डिग्रियां काम क्यों नहीं आती जब मलकुल मौत आ जाता है? इंसान कितना नादान है ना, ज़रा से फ़ायदे के लिए कितने बड़े अपनी ज़िंदगी के फ़ायदे को दाव पे लगा लेता है, एट रिस्क है वो। कहते हैं हम तो बड़े मसरूफ़ हैं और ये 3 घंटे की क्लास कर ली है। अच्छा, मैंने हिसाब लगाया था, मैंने कहा एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 7 दिनों में, इसका मतलब है, मैं हिसाब लगा रही थी, आपके पास 168 आवर्स होते हैं हफ्ते में। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए मुश्किल हो रहा है 168 आवर्स में से 3 आवर्स कुरान को देना, ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, मैं फिर क्या ही कह सकती हूँ जब ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने को मिलती हैं ना, तो बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे काम तो बता देना है बस। अभी भी मेरी उस वक्त से नज़र टाइम पे है कि कहीं मैं आपकी मसरूफ़ ज़िंदगी से थोड़ा टाइम ज़्यादा ना ले लूँ, वो फिर मेरे लिए परेशानी का बायस होगा। मैं ये सोचती हूँ, या अल्लाह तेरे कलाम के साथ क्या लगाव है इन लोगों का। याला तू देख रहा है ना, वो जिनको तूने चुना इसलिए कि वो तेरे कलाम को आगे पहुंचाएं, वो तो खुद आज तेरे कलाम से बेजार हैं। हाँ, अगर इनको ये कह दिया जाता ना कि 3 घंटे बैठोगे तो हर घंटे पे $500 मिलेगा, खुदा की कसम, मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ, इनमें से एक भी ना हिलता अपनी जगह से। मगर आज अल्लाह तेरे कलाम की तो इतनी भी वक़्त नहीं जितनी $500 की है। वाह रे उम्मते मोहम्मद, दफ्तरों में, फाइलों में, सर खपाने में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बैठ जाएंगे, चंद टकों के लिए, 5 days a week, कम से कम 8 घंटे मुसलसल दिमागी काम करेंगे, थकते नहीं हैं, कोई नहीं शिकायत करता, लेकिन कुरान के लिए 3 घंटे से ऊपर टाइम अगर हो जाए ना, इतना मुश्किल लगता है। अभी तो 3 घंटे की भी शिकायत आ रही है कि 2 से 3 क्यों कर दिए। तो जो ये कहता है ना, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी आपको रोना चाहिए अपनी हालत पे, क्योंकि एक दिन आप इसी वक्त के लिए कहोगे कि काश ये वक्त मैं और गुजार लेती। आए उस वक्त हमारी कमबख्ती हम पे गालिब आ गई, बदबख्ती कि ये मसरूफियात, ये ख्वाहिशात, ये मशगूलियात, यही तो वक्त नहीं निकालने देती। इंसान को लगता है मेरी जिंदगी का मकसद ही ये काम ही है। क्या इंसान की जिंदगी का इस कदर घटिया मकसद है? आप यहां से उठ के जाएंगे क्या काम करेंगे? आप जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो मुझे बताएं, खाना बनाना है, कुछ और काम करना है, कोई घर के और करने हैं। और डोंट से टू मी के जो है ना, हमने हमने जुमे के दिन बहुत और निकी के काम करने होते हैं, हमने सूरह कहफ पढ़नी होती है और जुमे के लिए जाना होता है। इसलिए अगर ऐसा ही होता ना कि आप सारी की सारी खवातीन, 300 लोग जुमे के लिए जा रहे हैं, तो यकीन करें जुमे के दिन मस्जिदें सारी औरतों से ही भरी होती हैं। ऐसा तो नहीं कहीं देखा गया। बस ये ख्वाहिशात हैं जिनके पीछे इंसान भागता है और कभी नहीं खत्म होने वाली। क्या इस कुरान को छोड़ के इससे भी अच्छी कोई चीज़ है जिसकी तरफ आपने जाना है? और इन्हीं के पीछे भागते भागते दुनिया से चले गए तो रब के पास क्या लेके पहुंचेंगे? खाली हाथ? आज सब चीज गैब के पर्दे में है ना, तो आज हमें ये लग रहा है कि हर चीज इंपॉर्टेंट है। कल को गैब का पर्दा हट गया और वहां की चीजें नजर आने लगी ना, हर चीज यहाँ की अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगी। हम तो राह भूले में, वो कहते हैं वमा कुन्ना, सॉरी, वकुन्ना कौमन दौलीन, और हम तो थे गुमराह लोग, हम राह भूले हुए थे, हम तो लॉस्ट थे, हमारी प्रायोरिटीज ही सही नहीं थी। जो 3 घंटे बैठते हो वो तो खुदा के लिए रब को दे दो, उसमें भी कोई इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है कि उसमें भी बीच में हमें उठ के जाना पड़ता है, हमसे नहीं इतना देर बैठा जाता। अल्लाह अकबर, मैं बस क्या ही कहूं, रोना ही आता है मुझे फिर इस आपकी हालत पे। या शायद वाकई इतना मुश्किल है बैठना या ये सुनना बातें। जब हम इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वक्त निकालते हैं, लज्जतों को पूरा करने के लिए वक्त निकालते हैं, मगर अल्लाह की आयात को सुनने के लिए कोई भी नहीं वक्त निकलता, ना अपना दिमाग देना चाहते, ना वक्त देना चाहते, ना मेहनत, ना माल, कुछ भी ना लगे, तो फिर क्या मिलेगा हमें? फिर कभी जुमे का बहाना होता है, कभी क्लास बड़ी लंबी है, कभी कुछ और मसला है। अगर आप गौर करें ना, मसला बाहर नहीं होता, मसला दिल के अंदर है। दिल दिल, जब कोई भी काम ऐसा हो जब जिसमें दिल का शौक ना हो ना, तो फिर बोरियत ही होती है, फिर 3 घंटे भी मुश्किल से गुजरेंगे, फिर बार बार घड़ी देखेंगे। और जब दिल की शौक पैदा हो जाए, दिल में तड़प पैदा हो जाए, तो याद रखें फिर 3 घंटे भी ऐसे लगेंगे लम्हों में गुजर गए। फिर इंसान सारी मसरूफियात से भी अपने आप को खींच के लाता है कि रब के लिए वक्त लगाना है, कोई चीज़ रुकावट नहीं बनती। फिर छोटे छोटे बहाने नहीं आते, आज मेहमान घर पे आए हुए थे और आज बच्चा बीमार था, फिर कुछ नहीं होता। तो ये जिंदगी तो लज्जतों के पीछे, ख्वाहिशात के पीछे भाग भाग के गुजार दोगे, वहां पे जाके क्या कहोगे? फिर वहां पे तो यही होगा ना, रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना वकुन्ना कौमन दालीन, हम तो लॉस्ट हो गए थे अल्लाह, हम लॉस्ट सोल्स थे, हम गुम हो गए थे, हमें पता ही नहीं चला, हमने सीरियसली लिया ही नहीं, आयतें तो पढ़ी गई थी, हमारे ऊपर ही हमारी कमबख्ती आ गई, हम किन चीजों में पड़े हुए थे, यही चीजें फिर लीस्ट प्रायोरिटी की बन जाएंगी, यही चीजें बेवकत नजर आने लगेंगी। आज हम सिर्फ खुद ही नहीं भटकते, हमारा कसूर एक और भी होता है, दूसरों को भटकाना। दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते पे नहीं आने देते। आगे उसकी बात आ रही है, वो कहेंगे रब्बना अखरिजना, ए हमारे रब हमें यहाँ से निकाल दे। फइन उदना फइन्ना जालिमून, अगर हम दोबारा करेंगे तो हम जालिम होंगे। अल्लाह हमें एक दफ़ा बस निकाल दे, हमें यहाँ से जहन्नुम से निकाल एक दफ़ा। उस वक्त तो हमारी कमबख्ती हमारे ऊपर आ गई थी, हम पता नहीं किन चीज़ों में खो गए थे, आखरत को हमने भूले हुए थे, हम भटके हुए थे। या अल्लाह हमें पता ही नहीं था हमने किधर जाना है और क्या करना है, अब हमें समझ आ गई। अल्लाह ताला अब हमें एक दफ़ा अब वापस भेजें, ओनली वन चांस हमें दें। और ये एक दफ़ा नहीं, ये तो बहुत दफ़ा वो चांस मांगेंगे। और इसका आपने भी पढ़ा है कुरान पाक में, बार बार आता है, कितनी जगह पे आया है कि वो चांस मांगेंगे कि या अल्लाह हमें वापस जाने दीजिए, हमें एक दफा मोहलत दे दें। हम एक दफा चले गए तो हम दोबारा ऐसे काम नहीं करेंगे। और इसके बारे में 6 दुआओं का जिक्र आता है, एक तो वो है सूरह सज्दा में, उस वक्त वो कहते हैं काश अल्लाह ताला जो फरमाते हैं ना कि वो कहेंगे कि काश ऐ हमारे रब हमने देख लिया, हमने सुन लिया, अब हमें आप वापस लौटा दें तो हम नेक अमाल करेंगे। तो फिर सूरह मोमिन में भी आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया, वो कहेंगे ऐ हमारे रब तूने हमें 2 बार मारा और 2 बार जिंदा किया, हम अपने गुनाहों का अब मानते हैं, अब हमने मान लिया, अब हमारे निकलने की कोई सूरत पैदा फरमाए। फिर एक और दफ़ा सूरह जुखरुफ में 77 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो पुकारेंगे ऐ मालिक चाहिए कि आपका रब हमारा काम तमाम कर दे। ये अब जहन्नुम के दारोगे को पुकारेंगे, कहेंगे अल्लाह ताला से कह के हमें मौत ही दे दे, वो कहेगा तुम हमेशा इसी में रहने वाले हो, अब मौत भी नहीं आनी। फिर उसके बाद सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 37 में फरमाया कि वो काफिर दोजख में चिल्लाएंगे ऐ हमारे रब हमें निकाल दे, हम पहले एक काम नहीं करेंगे इसके खिलाफ दूसरे काम करेंगे। अल्लाह ताला जवाब देगा क्या मैंने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी, जिसमें कोई समझने वाला होता तो समझ सकता था, अब मुझे बताएं ये क्या हमारे लिए भी नहीं हुज्जत आ सकती कि अगर समझने वाले होते तो समझ जाते। और जिनको कुरान सुन के भी ना आज तक समझ आया, मैं तो उनकी आफरीन कहती हूँ उनके ऊपर कि इतनी इतनी आयतें आई अभी तक भी नहीं इनको समझ आई, अभी तक भी इनको ये बोर लगता है, इनको फिर कौन सी चीज समझाएगी। इनको तो कहना चाहिए कि अब हमारी ये एज हो गई है, हम में से हर कोई अपनी जिंदगी के 30 साल तो गुजार चुका ना, मेरा नहीं ख्याल है कोई क्लास में इतना यंग है कि 30 साल से छोटा है। अब कितनी जिंदगी रह गई है जिसने 30 साल गुजार लिए, अब कितनी टाइम रह गई, जिन्होंने 40 गुजार लिए वो अपने मुताबिक सोचें, जिन्होंने 50 गुजार लिए वो अपने मुताबिक सोचें कि कितनी और रह गई होगी। अब आपको कितनी स्पीड चाहिए इस सारे वक्त को जो आपने जाया कर दिया है उसका मेकअप करने के लिए, कितनी आपको अगर पता हो कि आपने किसी जगह पे 5 बजे पहुंचना था और ऑलरेडी 4:45 हो चुके हैं और 1 घंटे का रास्ता है, वो आप किस स्पीड पे गाड़ी चलाती हैं, ये तो आप वो भी नहीं देखती कि स्पीड लिमिट कितनी है, एक्स्ट्रा करती है ना। आपको पता चल जाए मेहमानों ने 1 घंटे में पहुंचना है, आप कितनी तेजी से काम करेंगे। आप मुझे बताएं आपकी जिंदगी कम रह गई है, ज्यादा गुजर गई है, फिर भी आप स्लो हैं अभी तक, और कुरान सुन के भी आप कहते हैं कि नहीं अब हमें इतना टाइम नहीं है, इतना नहीं टाइम दे सकते। तो कहा गया कि फिर इतनी वो ये सारी दुआएं करेंगे, कहेंगे अल्लाह ताला कहेंगे तुमने समझना होता ना तो उस वक्त समझ जाते, तुम्हारे पास डराने वाला भी आया था, सो अब अज़ाब का मज़ा चखो, जालिमों का कोई मददगार नहीं। ये सूरह फातिर में आया। और फिर उसके बाद कई अरसा गुजर जाएगा, फिर ये उलमा ने लिखा है कि फिर इनकी आखिरी दुआ ये होगी जिसका यहाँ पे सूरह मोमिनून में जिक्र है कि हमें निकाल, ला हम अब नहीं करेंगे हमें निकाल। तो अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे, काल अख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, तुम यहाँ दूर रहो इसमें और ना तुम मुझसे कलाम करो, मेरे से अब बात मत करना। अब ये जब उनको कह दिया जाएगा तो उसके बाद फिर अब वो कोई दुआ नहीं कर सकेंगे और दर्द और अजियत से चीखते चिल्लाते ही रहेंगे यहीं पे। और अल्लाह ताला ने फरमाया انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. ایک گروہ تھا، تمہارا ایک قصور یہ بھی تھا کہ ایک گروہ تھا میرے بندوں کا، وہ میرے سے یہ دعا کیا کرتا تھا، اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. تو تم کیا کرتے تھے؟ فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اور مذاق اڑانے سے کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اصل میں مذاق اڑانے سے لوگ دین کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ اس وجہ سے پھر کام نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں لوگ میک فن کریں گے، لوگ مجھے میرے اوپر ہنسیں گے. تو تم لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تم انہیں اپنے لیے تو عذاب کو سر پہ لیا ہی، اور دوسروں کو بھی دین سے ہٹاتے تھے ان کا مذاق اڑا کے. اور یہ آج اگر ہم مذاق نہیں اڑاتے تو ہم مجلسوں میں بیٹھ کے جب لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، بہت لمبا ہے، ٹیسٹ بڑا مشکل ہے، یاد کرنا بڑا مشکل ہے، سبق بڑا لمبا ہوتا ہے، ٹائم کلاس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو بلا رہے ہیں قرآن کی طرف بلا رہے ہیں یا بھگا رہے ہیں؟ یہ مجھے بتائیں. صرف جو انسان قرآن سے نہیں جڑا ہوا ابھی تک، وہ کیا سوچے گا کہ آپ پتہ نہیں کتنی مصیبت میں آئے، اس کی تو جان مصیبت میں پڑی ہوئی ہے، میں نہ مصیبت میں پڑ جاؤں. آپ نے اپنے لیے کیا کمایا؟ پھر جب منہ سے بات نکالنے لگے نا، تب بھی سوچ سمجھ کے نکالا کریں، میری اس بات سے لوگ اللہ کے قریب آئیں گے یا اس کے دین سے دور جائیں گے؟ اس کے کلام سے قریب ہونے والے کرے گی یا دور کرے گی؟ تو تم تو لوگوں کا مذاق کرتے تھے، اور آج مذاق کرتے ہیں لوگ. کس چیزوں پہ مذاق کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ظاہری چیزوں پہ زیادہ مذاق ہوتا ہے، کسی کا حجاب دیکھ لیا اس کے اوپر مذاق، کسی کی داڑھی دیکھ لی اس پہ مذاق، کسی کے آدمی شلوار اگر پائنچوں سے وہ اپنی ٹخنوں سے اوپر کر لیں اس کا مذاق، لیکن عورتیں اگر کر لیں تو وہ بہت اچھی ہیں، وہ بڑا خیر کا کام کر رہی ہیں، ان کو بہت صحیح سمجھیں گے. ہم نارے معیار بھی سبحان اللہ کیا ہو گئے ہیں، نیکی کو بدی سمجھتے ہیں، بدی کو نیکی سمجھتے ہیں. تو یہ فریق کون سا تھا؟ کافر تو مذاق اڑاتے ہی تھے ایسے لوگوں کا، ایسے مسلمانوں کا جو نادار مسکین ہوتے تھے. آج ہمارے مسلمان سو کالڈ مسلم بھی کوئی کم نہیں ہے دوسروں کا مذاق اڑانے میں، کبھی کسی کے نقاب کا مذاق، کبھی کسی کے پیچھے اس کی کسی چیز کا، اس طرح کی چیز کا جو دین سے متعلق ہے اس کے اوپر اس کا مذاق اڑاتے تھے. حتیٰ انسوکم ذکری، تم یہاں تک کہ انہوں نے بھلوا دیا تجھ کو میرا ذکر بھی، تمہیں اتنا بھی نہیں لحاظ رہا کہ ان کو یہ حکم میں نے ہی تو دیا ہوا ہے، تم میرا بھی مجھے بھی بھول گئے. سمجھ آئی بات؟ کہ تم نے اتنا بھی لحاظ نہ کیا، تم نے اتنا بھی شرم نہ کی مذاق اڑاتے ہوئے کہ یہ ان کو حکم کس نے دیا ہوا ہے، یہ کس کی مان رہے ہیں جس کے اوپر میں مذاق اڑا رہا ہوں. اب ظاہر ہے وہ اس بندے کا تو مذاق نہیں، یہ تو اللہ کے حکم کا مذاق ہوا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق ہوا. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم تھے ان سے ہنسا کرتے. اِنِّي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، تو بے شک میں نے تو جزا دی ان کو آج بے وجہ اس کے کہ جو انہوں نے صبر کیا، ان کے صبر کی آج میں نے تو ان کو جزا دی ہے. کیا جزا دی؟ جنت دے دی. تو اس لیے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، یقین کریں خوش قسمت ہیں جن کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، کیونکہ اور وہ صبر سے چلتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بھاگ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کا ذرا سا مذاق اڑایا، اب آپ اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا سا مذاق کسی نے کیا سب چھوڑ کے بھاگے، ہم نہیں کرتے بھائی یہ، لوگ مذاق کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی طرف آ جائیں، کوئی اس کا حکم مانے، لوگوں کو ہمیں بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو ہمیں بڑا اچھا سمجھنا چاہیے، بڑی اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے، لیکن جب ہمیں چبھتی ہوئی نگاہیں ہمارے پر پڑتی ہیں یا لوگ ہمیں مذاق کرتے ہیں تو پھر ہم فوراً چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں ہم سے نہیں یہ ہوتا، یہ نہیں ہم کر سکتے. تو دیکھیں جو لوگ صبر کے ساتھ پھر بھی جمے رہے، انہوں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، لوگ مذاق اڑائیں کچھ بھی کہیں ان کو نہیں کسی کی پرواہ، وہ چلتے چلے جاتے ہیں، چاہے کوئی مذاق کرے، چاہے تانے دے، چاہے کچھ بھی کہے، وہ جمے رہے اللہ کی اطاعت پہ. تو دیکھیں ان کے لیے صبر صرف غم کے اوپر نہیں ہوتا، صبر اللہ کی اطاعت پہ بھی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی جب انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے اللہ کی نافرمانی سے اور اس کی اطاعت پہ چلتا ہے، وہ بھی صبر کے بغیر تھوڑی ہو سکتا ہے، اس میں بھی تو صبر چاہیے. تو وہ صبر سے چلتے چلے گئے، تو ایسے لوگوں کی جزا ہوگی جنت. پھر ہم کب تک دین پہ چلتے ہیں؟ جب تک ہمارے کوئی اپریشیشن کر رہا ہو موافق حالات ہوں، یا جب لوگوں کی سپورٹ نہیں بھی ہے، جب برے حالات بھی ہو جائیں، جب لوگ مذاق بھی کریں تب بھی ہم چلتے رہتے ہیں. خود ہی دیکھ لیں ہم میں کتنی استقامت ہے. अन्नाहुम हुमुल फायजून, बेशक वो वही कामयाब होने वाले, यही लोग जो सब्र से चलते रहे किसी की परवाह किए बगैर। उनको नहीं फिक्र होती थी कि कोई मेरा मुझे क्या कह रहा है, उनको बस ये देखना होता था कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, ये कामयाब होंगे। काला कम लबिस तुम फिल अर्दी अदद सिनीन, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ कि वहां पे जाके फिर लोग कहेंगे यही जो दुनिया की जिंदगी का आप इतने इसके पीछे भाग रहे हैं ना, वो वहां पे जाकर कहेंगे कितने साल रहे, एक दूसरे से पूछेंगे। या अल्लाह ताला सॉरी, यहाँ पे तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, कहा कितना रहे तुम जमीन में, सालों की तादाद में बताओ कितनी देर रहे। काला कालू लबिसना यौमन औ बादा यौमन फसअलिल आतीन, उन्होंने कहा हम ठहरे रहे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, आप बेशक पूछ लें, गिनने वालों से पूछ लीजिए आप। गिनने वाले कौन? या तो फरिश्ते, वो भी उनके साथ ही रहे हैं, उनके अमाल को गिनते रहे हैं और उनके दिन भी गिन रहे थे जब उनकी जान निकालनी है कब निकालनी है, और दूसरे माहिर लोग जो गिनती करने वाले हैं, आप बेशक इनसे पूछ लें। हमारी बात पे नहीं यकीन आता, हम तो सिर्फ एक दिन रहे, हम तो चंद घड़ियां रहे, लेकिन देखो हम कैसे लोग हैं, इन चंद घड़ियों को परफेक्ट बनाने के लिए आज हम क्या क्या पापड़ बेलते हैं ना, कितनी हमारी भाग दौड़ है, कितना हम आखरत को भूले हुए हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला जब अहले जन्नत को जन्नत में भेज देंगे, अहले जहन्नुम को जहन्नुम में भेज देंगे, तो अल्लाह ताला जन्नत वालों से कहेंगे यही बात कहेंगे, कम लबिस तुम फिल अर्दी अदद सिनीन, कितना रहे थे, वो कहेंगे दिन या दिन का कुछ हिस्सा, अल्लाह ताला फरमाएंगे एक दिन, एक दिन के कुछ हिस्से में तुम इतनी बड़ी तुम्हें नेमत मिल गई कि आज मेरी रहमत में हो, मेरी रजा तुम्हें मिल गई, मेरी जन्नत में हो, अब आराम से इसमें हमेशा के लिए रहो। फिर आग वालों से पूछेंगे तुम कितना अरसा रहे दुनिया में, वो कहेंगे अल्लाह हम भी एक दिन या एक दिन से कुछ कम ही रहे होंगे, इससे ज्यादा नहीं। अल्लाह ताला कहेंगे कितने बुरे तुम्हारे हालात रहे, तुम कितनी बुरी जजा को पहुंचे, एक दिन या एक दिन के कुछ हिस्से में तुमने मेरी आग कमा ली, मेरी नाराजगी मोल ले ली, अब इसमें हमेशा पड़े रहो। अब हमें भी ये देखना है कि यहाँ पे आज हम किसका सौदा कर रहे हैं, आग का या जन्नत का। इस एक दिन के लिए सिर्फ हमें फरमाबरदारी करनी है, फिर हमेशा की खुशियां हैं। और जो एक दिन भी सब्र ना कर सका, एक दिन भी इतात ना कर सका, तो फिर उसको क्या मिलेगा, कितना थोड़ा टाइम है ना, कितनी थोड़ी देर के लिए तो हमें करना है। इसलिए हौसले से चलते रहें, सब्र करें, जल्दी ये जिंदगी तो खत्म हो जानी है। अफहसिबतुम अन्नमा, अच्छा अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाल इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीलन लव अन्नकुम कुंतुम तालमून, कहा अल्लाह ताला फरमाएंगे वाकई तुम बड़ा थोड़ा ठहरे थे दुनिया में, लेकिन काश ये बात तुम्हें उस वक्त पता चल जाती, उस वक्त जब तुमने ज़िंदगी को खेल कूद बनाया हुआ था ना, तुम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे थे, नफसा नफसी पड़ी हुई थी, एक दूसरे के से मुकाबले करते थे आगे बढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा अच्छा और उससे ज़्यादा अच्छा, काश ये तुम्हें उस वक्त पता चल जाता कि तुम कितनी थोड़ी देर के लिए रहने आए हो यहाँ, हमेशा का थोड़ी है तुम्हारा ठिकाना। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम ये समझे बैठे थे कि तुम को हमने ऐसे ही बेकार ही पैदा किया है, तुमने वापस नहीं हमारे पास आना, तुम दुनिया में इतने गुम हो गए थे, तुम्हें भूल ही गया था कि तुमने कभी वापस आना है, तुमने ये समझा हुआ था कि पता नहीं अल्लाह ने ऐसे ही पैदा किया है तो बस इसी तरह हम खेल कूद के खा पी के यहाँ पे फन करके और इस तरह ही बस दुनिया से चले जाएंगे, और किसी ने हमें थोड़ी कुछ पूछना है, बस खाओ पियो पहनो ओढ़ो अच्छे घर बनाओ अपनी मर्जी के काम करो फन करो एंटरटेनमेंट हो, बस यही जिंदगी है, तुमने सोचा हमने ऐसे ही तुम्हें छोड़ देना है, इतना बेकार नहीं हमने इंसान को बनाया। तो इंसान को ये वक्त जाया करने को नहीं दिया गया इसलिए कि वापस जाना है हमने, ये बात इंसान को भूल जाती है ना, इसीलिए वो जाया कर रहा है इस वक्त को। तो अपनी सोच को सही करें, हमेशा के लिए नहीं आए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने आखिरी खुतबे में अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद फरमाया, ये बड़ा ही प्यारा खुतबा है, आप इसको सुने, फरमाया लोगों तुम बेकार और अबस पैदा नहीं किए गए, तुम ऐसे ही नहीं छोड़ दिए जाओगे, याद रखो वादे का एक दिन है जिसमें खुद अल्लाह ताला फैसला करने और हुक्म फरमाने के लिए नाजिल होगा, और नुकसान में पड़ा उसने खसारा उठाया, वो बदनसीब हुआ, वो बदबख्त हो गया, वो महरूम और खाली हाथ रहा जो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया और जन्नत से रोक दिया गया जिसकी चौड़ाई कुल ज़मीनों और आसमानों के मिसल है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कल क़यामत के दिन अज़ाबे इलाही से वो बच जाएगा जिसके दिल में उस दिन का खौफ आज है, और जो इस फ़ानी दुनिया को उस बाकी आखरत पर कुर्बान कर रहा है, इस थोड़े को उस बहुत के हासिल करने के लिए बेतुकान खर्च कर रहा है, और अपने इस खौफ को अमन से बदलने के असबाब मुहैया कर रहा है। क्या तुम नहीं देखते कि तुमसे पहले लोग हलाक हुए जिनके कायम मकाम अब तुम हो, इसी तरह तुम भी मिटा दिए जाओगे, और तुम्हारे बदले आइंदा आने वाले आएंगे, यहाँ तक कि एक वक्त आएगा कि सारी दुनिया सिमट कर उस खैरुल वारिसीन के दरबार में हाजिरी देगी। लोगों ख्याल तो करो, तुम दिन रात अपनी मौत से करीब हो रहे हो, अपने कदमों से तुम अपनी कब्र की तरफ चल के जा रहे हो, तुम्हारे फल पक चुके हैं, तुम्हारी उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं, तुम्हारी उम्रें पूरी हो रही हैं, तुम्हारी मौत नज़दीक आ गई है, तुम ज़मीन के गड़ों में दफन कर दिए जाओगे, जहाँ ना कोई बिस्तर होगा, ना तकिया, ना दोस्त अहबाब छोड़ जाएंगे, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, अमाल सामने आ जाएंगे, जो छोड़ आए वो दूसरों का हो जाएगा, जो आगे भेज चुके उसे सामने पाओगे, नेकियों के मोहताज होगे, बदियों की सज़ाएं भुगतोगे। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, इसकी बातें सामने आ जाएं इससे पहले मौत तुमको उचक ले जाए, इससे पहले जवाबदेही के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहना था कि रोने के गलबे ने आवाज़ बंद कर दी। इतना रोना आया कि मुंह पे चादर का कोना डाल के रोने लगे, और हाजरीन जो थे उनकी आहो बुका शुरू हो गई। ये तफसीर इब्ने कसीर में अगर आप देखना चाहें तो, यहाँ की मशगूलियत में ना पड़ो, ये ज़िंदगी अल्लाह ने बेकार नहीं दी, इस काम के लिए नहीं दी कि जिसमें अपने आप को वेस्ट कर रहे हो। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हु रब्बुल अर्शिल करीम, वो बड़ा बुरंद अल्लाह है, तुमने क्या समझा हुआ उसने बेकार ही चीज़ें पैदा की हैं, वो तो हक है, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, वो करीम अर्शे करीम का रब है, क्योंकि करम वहीं से नाजिल होता है। वमन यदउ मअ अल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहाना लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बी, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और को भी पुकारा तो इसकी कोई दलील नहीं है, इसके लिए इसकी कोई दलील नहीं है। सोचें आप, कोई अभी जैसे बात हो रही थी, कोई दलील है ही नहीं, हमने पढ़ा है ना अभी कि दो अगर इलाह होते तो क्या हो? तो कोई दलील ही नहीं है, पूरी कायनात बता रही है इसका कोई सबूत नहीं है। इस बेशक हिसाब इसका उसके रब के पास है, जो भी ऐसा करेगा शरीक करेगा तो इसका हिसाब इसके रब के ज़िम्मे है, उसकी पूछ वही करेगा। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, बेशक वो काफिर जो है ना वो नहीं फला पा सकता। अब आपने देखा सूरा शुरू कैसे हुई, कद अफलहल मोमिनून, मोमिन जो है वो फला पा जाते हैं, और काफिर उसको कभी फला नहीं मिलती, कामयाबी उसके पास नहीं है। चाहे आप उसके पास कितनी आसाइशें देखें, कितना आप उसके पास सामान देखें, कितनी उसकी तरक्कियां देखें, लेकिन उसको फला नहीं मिलेगी। कामयाबी जो असल कामयाबी है वो डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि फलाह का रास्ता अलग है और नाकामी का रास्ता अलग है। जो नाकामी के रास्ते पर चला उसकी मंजिल जहन्नुम है, जो फलाह के रास्ते पर चला तो उसको अपने लिए ये काम जो हमने शुरू में पढ़े थे ये अपने अंदर पैदा करने होंगे, तभी वो फलाह की मंजिल जो है जन्नत उस तक पहुंच सकेगा। वक़ुर रब्बे ग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, आप कह दीजिए नबी, आप ये कह दें ए मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझ पे रहम फरमा, तू बेहतरीन है रहम करने वालों में, सब रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा अच्छा रहम करने वाला तू है। ये दुआ सिखा दी गई, और यहाँ पे मफूल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया, ये नहीं रब्बे फिरली एक दुआ है, या ये कहा जाता है अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, कुछ ऐसी बात नहीं कही, या मुझ पे रहम फरमा, या मेरी बच्चों पे रहम फरमा, या इस तरह की बात नहीं, मफूल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, फ़ाइल और मफूल होते हैं ना, मफूल नहीं है, यानी आम है, यानी अल्लाह मगफिरत सारी की सारी मगफिरत ही मांगी, हर तरह की मगफिरत मांगी, हर तरह का रहम मांगा, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, आम है। तो ये जो आयात है ना यहाँ से लेके अफहासिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबासा, तो कहा जाता है कि एक आदमी बीमार था, ये भी कहा जाता है मजनून था, उसके ऊपर जिन उसको सताते थे, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के पास आया, तो आपने यहाँ से अफहासिब तुम से लेके ये एंड तक खैरुर्राहिमीन तक की आयतें उसके कान में तिलावत फरमाई, तो वो सही हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र आया तो आपने फरमाया अब्दुल्ला तुमने इसके कान में क्या पढ़ा, आपने बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने आयतें इसके कुरान में पढ़कर उसे जला दिया। वल्ला इन आयतों को अगर कोई ईमान से और यकीन के साथ किसी पहाड़ पर पढ़े तो वो भी अपनी जगह से टल जाए, इतनी ज़बरदस्त आयतें हैं। तो ये दुआ याद कर लें आप, रब्बे गफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, क्योंकि हम सबको अल्लाह ताला की तरफ से मगफिरत की भी ज़रूरत है और उसके रहम के बगैर तो हम कहीं नहीं पहुँच सकते। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब इन्हीं की तिलावत सुने।
أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.